वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु। जीवन को वचनामृत दे दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन दिनों हम बाइबल अध्ययन में से फिलिपियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस अपने समय से ही एक महिमामय आशा के लिए तैयार है कि हमारे स्वदेश अर्थात स्वर्ग में प्रभु यीशु को देखे। जो यीशु हमारे पास फिर से आने वाला है और हमें महाक्लेश से पूर्व उठा ले जाएगा। परंतु कैसे, उसके बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह हमें से प्रत्येक के जीवन के ऊपर हो, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक श्रोता भाई बहन जब आपके वचन में से सुनते हैं, निश्चित रूप से प्रभु आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। आप हर एक के जीवन से बोली और बातचीत कीजिए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं, किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, वैवाहिक जीवन के लिए योग्य साथी की तलाश में हैं, अपने जीविका के लिए अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, अपने माता पिता के साथ यदि बच्चे बिगड़ गए हैं, किसी प्रकार की परिस्थिति में उलझे हुए हैं, उस परिवार की दशा खराब है, ऐसे लोगों के साथ भी आप हो लीजिए। आज हमारी प्रार्थना है अपने वचन से हर एक को शांति प्रदान कीजिए। इस समय हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने देखा कि पौलुस अपने समय से ही एक महिमामय आशा लिए हुए था कि हमारे स्वदेश स्वर्ग में से प्रभु यीशु फिर आएगा और हमें महाक्लेश से पूर्ण रूप से उठा ले जाएगा। परंतु कैसे, तो आइए आज हम इसमें आगे बढ़ें और देखें। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 21 पद, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, हमारी दीनहीन देह या नाशवान देह, वह हमारे इस पार्थिव देह को बदल देगा। हमारी यह देह सांसारिक है जो सीमाओं में बंधा है। यह देह इस संसार पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल है। हम अंतरिक्ष में जाने के लिए संपन्न नहीं है। हमारी देह इस पृथ्वी के अनुरूप बनी है, अपनी महिमा की देह के अनुकूल वह बना देगा। एक दिन आप और मैं इस नाशवान देह से निकल जाएंगे, वे बदल जाएंगे। मैं तो इसी पल अपनी देह का परिवर्तन देखना चाहता हूं, क्योंकि वह इसे अपनी महिमा की देह के अनुरूप बना देगा। यह देह वैसी हो जाएगी जैसे यीशु के पुनरुत्थान की देह थी, महिमा की देह, जिसका उल्लेख पौलुस 1 कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में करता है। आइए हम पढ़ें। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुख्य बात यह है कि यह काम अकस्मात ही होगा जब तुरही बजेगी। इस बाइबल अंश के गलत अर्थानुवाद के संबंध में कुछ लोगों का सोचना है कि यह तुरही फूंकने वाला स्वर्गदूत उन स्वर्गदूतों में से एक है जिनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है। परंतु तुरही फूंकने वाले स्वर्गदूत के विषय पौलुस ने कोई परिचय नहीं दिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसराइल से संबंधित है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि इसराइल ने मिस्र से जब प्रस्थान किया, तब तुरहियां फूंकी गई थी। दो चांदी की तुरहियां फूंकी गई और उन्होंने चलना आरंभ किया। हमारे लिए तुरहियां विचित्र सी लगती हैं, परंतु इसराइल के लिए वह एक आम वाद्य था। आपको शायद याद होगा कि अंतिम तुरही का उल्लेख थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में उठाए जाने के संबंध में है। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ध्यान दीजिए, यह परमेश्वर की तुरही है। जिब्राइल को किसने यह तुरही दी कि वह उसे फूके? मुझे तो शक है कि जिब्राइल के पास तुरही भी है या नहीं। प्रभु जब उतरेगा तब उसका स्वर प्रधान स्वर्गदूत का सा होगा, परमेश्वर की तुरही का सा होगा। प्रधान स्वर्गदूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही दोनों प्रभु के स्वर की महिमा और सम्मान का प्रतीक हैं। उसका स्वर तीव्र और भयावह होगा। देखिए यूहन्ना महिमामय प्रभु यीशु के स्वर का कैसा वर्णन करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। उसने मुड़कर देखा, वह प्रभु यीशु का स्वर था। कलीसिया के संबंध में तुरहियां नहीं है। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में है, जहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह उसकी अंतिम पुकार है, रात्रि भोज की पुकार। यह महाक्लेश की रात के आने से पूर्व प्रभु की पुकार है। द्वार खुलने पर इस पृथ्वी से विश्वास के विमोचन मंच पर उपस्थित मनुष्यों के एक समूह का आरोहण होगा। वे महाक्लेश के समय इस पृथ्वी पर नहीं होंगे। मेरे विचार में वे जो कलीसिया को महाक्लेश में रखना चाहते हैं उनका विचार डामाडोल है, परंतु बुद्धिजीवी भी इस विचार पर विश्वास करते हैं। मैंने देखा है कि ये लोग दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास आदि के अध्ययन में समय लगाते हैं, परमेश्वर के वचन के अध्ययन में वे समय नहीं लगाते, और यही कारण है कि वे बाहरी रूप से सोचना और देखना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यह ठीक वही विचार है जो यूहन्ना अपनी पहली पत्री में कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 2 पद में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रभु यीशु अभी तक फिर नहीं आया है, परंतु जब वह आएगा तो हम उसके समान होंगे। इस उच्च कोटि की आशा पर ध्यान दीजिए, अपेक्षा और उत्साह पर ध्यान दें। यह मसीह के फिर आने की एक महान आशा है। यहां लेश मात्र भी संकेत नहीं है कि पौलुस या यूहन्ना को महाक्लेश में होने का संदेह है। पौलुस को भावी आशा थी। आपकी भावी आशा क्या है? मेरी भावी आशा क्या है? क्या यह महाक्लेश की आशा है? मेरे मित्रों, यदि यह आपका भविष्य है तो आप एक निराश मनुष्य के समान आशाहीन हैं, क्योंकि आप महाक्लेश का सामना करेंगे। यदि आप उस परमेश्वर की आशा कर रहे हैं तब आप एक आशा में आनंद को देखने पाएंगे। एक बार कुछ लोग हवाई द्वीप समूह जा रहे थे तो दक्षिणी ओर से आम वायु मार्ग लेने की अपेक्षा यान चालक ने दक्षिणी ओर से प्रवेश किया, क्योंकि वहां आंधी आ रही थी। उसने कहा, हमारे सामने आंधी है और हम 30 मिनट तूफान में होंगे, जिसकी आशा कोई भी नहीं कर रहा था। जी हाँ, वह उनके लिए धन्य आशा नहीं थी, परंतु यह अच्छा हुआ कि उसने उन्हें चिता दिया कि वे आधे घंटे तक तूफान में रहेंगे। प्रभु ने कलीसिया से कहा, हम आंधी से बचेंगे, महाक्लेश से। मेरे मित्रों, आप इसे तोड़ मरोड़ कर अपना ही विचार प्रकट कर सकते हैं, परंतु वह कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। यह पौलुस की भावी आशा थी और हमारी भी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार की आशा के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं। आज मुझे और आपको वचन की गंभीरता को समझने, सीखने और जानने की आवश्यकता है, ताकि हम उस परमेश्वर पर आशा लगाकर रख सकें। यहां पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 में देखेंगे, जिसका विषय है मसीह जीवन का सामर्थ्य। मसीह जीवन का सामर्थ्य। हमने मसीह जीवन का विचार, मसीह जीवन का नमूना, मसीह जीवन का पुरस्कार देखा है और अब हम मसीही जीवन का सामर्थ्य को देखेंगे। यदि मसीही जीवन में सामर्थ्य ना हो तो शेष सब व्यर्थ ही है। जीवन का विचार कैसा भी उच्च कोटि का हो, सामर्थ्य बिना सब व्यर्थ है। जीवन का नमूना सामर्थ्य बिना अनुकरणीय नहीं, उसे जीवन में अपनाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। यदि लक्ष्य प्राप्त ना किया जाए तो पुरस्कार का क्या अर्थ, अर्थात पुरस्कार इसका क्या अर्थ रखता है? सामर्थ अति महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में पवित्र आत्मा ने पौलुस को पत्र का अंत 3 अध्याय उसके 1 पद पर करने से रोका, इसलिए हे मेरे भाइयों, क्योंकि वह आज हमें यह बताना चाहता था कि मसीही जीवन में सामर्थ्य है। हमें यह जानना आवश्यक है कि हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, वह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि आनंद सामर्थ्य का स्रोत है, प्रार्थना सामर्थ्य का भेद है और मसीह का ध्यान करना सामर्थ्य का पवित्र स्थान है। तो आइए हम देखें आनंद सामर्थ्य का स्रोत है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। यहां पर आप ध्यान दीजिए, मेरे आनंद और मुकुट, वे एक दिन मसीह की उपस्थिति में होंगे और पौलुस इन लोगों को प्रभु यीशु में लाने के लिए मुकुट पाने की आशा में था। वे इस पृथ्वी पर भी उसका आनंद थे। वह फिलिपी के विश्वासियों से कैसा प्रेम करता था। वह कहता है, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों से कहा था, 6 अध्याय उसके 13 पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मसीही विश्वास जीवन में स्थिरता लाता है। मेरे प्रियो, प्रत्येक विश्वासी को चाहिए कि मसीह में विश्वासी जीवन जिए, ताकि उसमें वह स्थिर रह सके। आज कई बार हम अपने जीवन में स्थिर नहीं रह पाते हैं, कारण यही है कि हम अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं। हम उसकी ओर अपनी नजर नहीं रख पाते हैं। हम इसके बजाय अपने ही विचारों में, लोगों के कहे हुए बातों में चलने लगते हैं। पौलुस कहता है कि विश्वासी जीवन उसमें स्थिर रहता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, मैं योदिया को भी समझाता हूं और सुंतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। अब वह फिलिपी की कलीसिया की एक समस्या का उल्लेख करता है। वह समस्या ऐसी गंभीर नहीं थी, पौलुस अपने पत्र के अंत तक उसका उल्लेख नहीं करता है। ये दो स्त्रियां एक दूसरे से बात नहीं करती थी। हमने देखा है कि जब उसने फिलिपी की कलीसिया को कहा कि उनमें वही स्वभाव हो जो मसीह में था, तो उसके कहने का अर्थ यह नहीं था कि वे एक दूसरे की नकल बन जाएं। उनमें अनेक विषयों पर मतभेद होगा, परंतु इसके कारण दो मनुष्य जिनमें मसीह का स्वभाव है एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मसीह की देह का यह एक अति महिमामय सत्य है कि प्रत्येक सदस्य अलग होते हुए भी सब मसीह में एक हैं। जी हाँ, क्योंकि हम एक ही देह के अंग हैं, हम एक ही मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं। फिलिपियों की पत्री 4:3 में लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, स्पष्ट है कि आरंभिक कलीसिया में स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उस युग में स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान देना असामान्य बात थी। अब क्योंकि मैं कलीसियाई सेवक के साथ में सेवक नहीं हूं, मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि स्त्रियां प्रचारक इसलिए बन रही हैं कि उन्हें कलीसिया में सुयोग्य स्थान नहीं दिया जाता है। कलीसिया में यदि स्त्रियों का पद है भी तो उसे अधिक मान नहीं दिया जाता है। मेरे विचार में वह एक महत्वपूर्ण विभाग है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं जितना अधिक वचन का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मुझे इसका विश्वास होता जाता है। पौलुस साफ साफ कहता है, तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में परिश्रम किया। क्लेमेंस यह फिलिपी का एक विश्वासी था जिसके बारे में हमने पहले नहीं सुना है। मेरे अन्य सहकर्मियों, इससे स्पष्ट होता है कि फिलिपी में विश्वासियों की बड़ी सहभागिता थी, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाना ही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रिय मित्र, आज हमें से प्रत्येक को इस बात पर विचार करना है कि क्या मेरे कार्यों को देखते हुए या मेरे विश्वासी जीवन के चाल चलन को देखते हुए मैं और आप इस बात को कह पाएंगे कि मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जिस प्रकार से पौलुस यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज यह बहुत ही गंभीर बात है कि हम में से कई लोग इस संसार में कलीसियाओं में जाते तो हैं, परंतु मसीही जीवन जैसा मुझे और आपको जीना चाहिए हम नहीं जीते हैं, और इस कारण से मुझे और आपको डर बना रहता है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें और देखें कि क्या मैं परमेश्वर की निकटता में अपना जीवन जी रहा हूं या नहीं। यदि नहीं, तो आज मेरे लिए और आप सबके लिए मौका है कि हम प्रभु के पास आएं, उससे अपने जीवन के लिए, उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं आपके निकटता में आना चाहता हूं, मैं एक सच्चा जीवन, सच्चा मसीही जीवन जीना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप इन दिनों में आप अपने जीवन में बहुत पाप कर रहे हैं या पापमय जीवन जी रहे हैं। मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानता है। आप उसे अपने मित्रों से, परिवार वालों से, अपने कलीसिया से या अपने सहकर्मियों से छिपा सकते हैं, यहां तक कि आप अपने पति या पत्नी से भी छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर उसे देखता है। आप इसे अधिक समय तक छिपा नहीं सकते। इससे पहले कि यह प्रकट हो जाए, आप उसे मान लीजिए, प्रभु के सम्मुख स्वीकार कीजिए और निश्चय जानिए कि आप भी उस जीवन की पुस्तक में अपने नाम को देख पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार के आशीषों को पाएं? यदि हाँ, तो तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और निश्चय ही परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर एक नई आशीष, एक नई आशा आपके अंदर में देंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। फिर से आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि हम आपके सम्मुख में होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है और इस बात को जान लिया है कि वे आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं और वे चाहते हैं कि अपने पापों ने जीवन से फिरकर आपकी ओर आ जाएं, ताकि उनके नाम भी आपके जीवन की पुस्तक में लिखे हुए पाए जाएं। पिता परमेश्वर, जो इस समय इस वचन को सुन करके मेरे साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं, आप उन्हें क्षमा करें, उनके जीवन में एक अवसर प्रदान करें, ताकि प्रभु इन सारी बुराइयों से हटकर वे फिर से आपसे प्रेम कर सकें, आपकी निकटता में आ सकें, पवित्रता का जीवन जी सकें। प्रत्येक भाई बहन जो पाप में लिप्त हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें ताकि वे बाहर आएं और आपके उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप उनके साथ में हैं, आप उनकी सहायता कर रहे हैं और आप उनसे प्रेम करते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
राजाओं का